Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like, in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there, and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है. ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है. ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है. प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें.
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है.
सादत हसन मंटो का फसाना इश्के हकीकी. इश्क मोहब्बत के बारे में अखलाक का नजरिया वही था जो अक्सर आशिकों का और मोहब्बत करने वालों का होता है. वो रांझे पीर का चेला था. इश्क में मर जाना उसके लिए नजदीक एक अजीमुशान मौत मरना था. अखलाक 30 बरस का हो गया, मगर बावजूद कोशिशों के उसको किसी से इश्क ना हुआ. लेकिन एक दिन अनगर्ड बर्गमैन की पिक्चर फॉर होम द बिल टोन्स का मैटिनी शो देखने के दौरान इसने महसूस किया कि उसका दिल उस बुरका पोश लड़की से वाबस्ता हो गया है जो उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और सारा वक्त अपनी टांग हिलाती रही थी. पर्दे पर जब साय कम और रोशनी ज्यादा होती तो अखलाक ने उस लड़की को एक नजर देखा. इसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे, नाक की फिनिंग पर चंद बूंदे थी. जब अखलाक ने उसकी तरफ देखा तो उसकी टांग हिलना बंद हो गई. एक अदा के साथ इसने अपने स्याह बुरके की जाली से अपने चेहरे को ढाप लिया. ये हरकत कुछ ऐसी थी कि अखलाक को बे इख्तियार हंसी आ गई. उस लड़की ने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा, दोनों होले होले हंसी. इसके बाद उस लड़की ने निकाब अपने चेहरे से हटा लिया, अखलाक की तरफ तीखी तीखी नजरों से देखा और टांग हिलाकर फिल्म देखने में मशगूल हो गई. अखलाक सिगरेट पी रहा था. अनगर्ड बर्गमैन उसकी महबूब एक्ट्रेस थी. फॉर होम द बिल टूल्स में उसके बाल कटे हुए थे. फिल्म के आगाज में जब अखलाक ने उसे देखा तो वो बहुत प्यारी ही मालूम हुई, लेकिन साथ वाली सीट पर बैठी हुई लड़की देखने के बाद वो अनगर्ड बर्गमैन को भूल गया. यूं तो करीब करीब सारा फिल्म उसकी निगाहों के सामने चला, मगर इसने बहुत ही कम देखा. सारा वक्त वो लड़की इसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अखलाक सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। एक मर्तबा उसने राख झाड़ी तो उसका सिगरेट उंगलियों से निकलकर उस लड़की की गोद में जा पड़ा। लड़की फिल्म देखने में मशगूल थी, इसलिए उसको सिगरेट गिरने का कुछ पता ना था। अखलाक बहुत घबराया। इसी घबराहट में इसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट इसके बुरके पर से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। लड़की हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अखलाक ने फौरन कहा, माफी चाहता हूँ, आप पर सिगरेट गिर गया था। लड़की ने तीखी तीखी नजरों से अखलाक की तरफ देखा और बैठ गई। बैठकर उसने अपनी सहेली से सरगोशी में कुछ कहा। दोनों होले होले हंसी और फिल्म देखने में मशगूल हो गई। फिल्म के इख्तिताम पर जब कायदे आजम की तस्वीर नमूदार हुई तो अखलाक उठा। खुदा मालूम क्या हुआ कि इसका पांव लड़की के पांव के साथ टकराया। अखलाक एक बार फिर सरतापा माजरत बन गया, माफी चाहता हूँ, जाने आज क्या हो गया है। दोनों सहेलियां होले होले हंसी। जब भीड़ के साथ बाहर निकली तो अखलाक उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लड़की जिससे उसको पहली नजर का इश्क हुआ मुड़ मुड़ कर देखती रही। अखलाक ने इसकी परवाह न की और उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसने तय कर लिया था कि वो उस लड़की का मकान देख के रहेगा। माल रोड के फुटपाथ पर YMCA के सामने उस लड़की ने मुड़कर अखलाक की तरफ देखा और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर रुक गई। अखलाक ने आगे निकलना चाहा तो वो लड़की इससे मुखातब हुई, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। अखलाक ने एक लहजा सोचकर जवाब दिया, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रही हैं। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद उसने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर दोनों चल पड़ी। बस स्टैंड के पास उस लड़की ने जब मुड़कर देखा तो अखलाक ने कहा, आप पीछे आ जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। अनारकली का मोड़ आया तो दोनों सहेलियां ठहर गई। अखलाक पास से गुजरने लगा तो उस लड़की ने उससे कहा, आप हमारे पीछे ना आइए, लहजे में बहुत संजीदगी थी। अखलाक ने बहुत बेहतर कहा और वापस चल दिया। उसने मुड़कर भी उनको ना देखा, लेकिन दिल में उसको अफसोस था कि वो क्यों इसके पीछे ना गया। इतनी देर के बाद उसको इतनी शिद्दत से महसूस हुआ था कि उसको किसी से मोहब्बत हुई, लेकिन उसने मौका हाथ से जाने दिया। अब खुदा मालूम फिर उस लड़की से मुलाकात हो या ना हो। जब YMCA के पास पहुंचा तो रुक कर उसने अनारकली के मोड़ की तरफ देखा, मगर अब वहां क्या था, वो तो उसी वक्त चली गई थी। लड़की के नक्श बड़े पतले पतले थे, बारीक नाक, छोटी सी ठोड़ी, फूल की पत्तियों जैसे होंठ। जब पर्दे पर साए कम और रोशनी ज्यादा होती थी तो उसने उसकी बलाई होंठ पर एक तिल देखा था जो बेहद प्यारा लगता था। अखलाक ने सोचा कि अगर ये तिल ना होता तो शायद वो लड़की नामुकम्मल रहती। इसका वहां पर होना अशद जरूरी था। छोटे छोटे कदम थे जिनमें कवारपन था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक मर्द मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए उनके इन छोटे छोटे कदमों में एक बड़ी प्यारी लड़खड़ाहट सी पैदा हो गई थी। उसका मुड़ मुड़ कर तो देखना गजब था। गर्दन को एक खफीफ सा झटका देकर वो पीछे अखलाक की तरफ देखती और तेजी से मुंह मोड़ लेती। दूसरे रोज वो अनगर्ड बर्ग मैन का फिल्म फिर देखने गया। शो शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी का कार्टून चल रहा था कि वो अंदर हॉल में दाखिल हुआ। हाथ को हाथ सजाई नहीं देता। गेटकीपर की बैटरी की आधी रोशनी के सहारे इसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी का कार्टून बहुत मजाहिया था। इधर कई तमाशाई हंस रहे थे। दफतन बहुत ही करीब से अखलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वो लड़की बैठी थी। अखलाक का दिल धक धक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्लो सूरत के एतबार से वो इसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। अखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह से देख ना सका। रोशनी हुई तो वो उठा। लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर उस मुहिम पर्दे के पीछे उसकी आंखें अखलाक को नजर आए जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकालकर सुलगाया। अखलाक ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मुखातब हुआ, जरा माचिस इनायत फरमाइए। लड़की के भाई ने उसको माचिस दे दी। अखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस उसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांग हिल रही थी। अखलाक सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा, इससे ज्यादा वो कुछ ना कर सका। फिल्म खत्म हुई, लोग बाहर निकलने शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। अखलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंडर के पास भाई ने अपनी बहन को कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया, लड़की उसमें बैठ गई। लड़का स्टैंडर में चला गया। लड़की ने नकाब में से अखलाक की तरफ देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। वहीं बाहर इसके तीन चार दोस्त खड़े थे। इनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे के ताकूब में रवाना हो गया। ये ताकूब बड़ा दिलचस्प रहा। जोर की हवा चल रही थी, लड़की के चेहरे पर से निकाब उठ उठ जाती। स्याहे जॉर्जेट का पर्दा फड़फड़ाकर उसके सफेद चेहरे की झलकियां दिखाता था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे। पतले पतले होठों पर स्याही माइल सुर्खी थी और बलाई होठ पर तिल, वो अशद जरूरी तिल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर पर से हैट उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था, इसके ओजनी पहिए के नीचे आया और वहीं चित गया। लड़की हंसी, अखलाक मुस्कुरा दिया, गर्दन मोड़कर हैट की तलाश देखी जो बहुत पीछे रह गई थी, और लड़की से मुखातिब होकर कहा, उसको तो शहादत का रतब मिल गया। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर बाद फिर इससे मुखातिब हुआ, आपको एतराज है तो वापिस चले जाता हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब ना दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अखलाक की तरफ बार बार देखी। नकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अखलाक एक पांव साइकिल के पैडल पर और दूसरा पांव दुकान के थड़े पर रखे थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि इस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने झांक कर अखलाक को देखा मगर फौरन ही शर्म कर पीछे हट गई। अखलाक तकरीबन आधा घंटा वहां खड़ा रहा मगर वो खिड़की नमूदार ना हुई। दूसरे रोज अखलाक सुबह सवेरे अनारकली की उस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने वाला था कि एक फाल से बेचने वाला सदा लगाता आया। खिड़की खुली, लड़की सिर से नंगी नमूदा हुई। इसने फाल से वाले को आवाज दी, भैया फाल से वाले जरा ठहरना। फिर उसकी निगाहें एकदम अखलाक पर पड़ी, चौंक कर वो पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पर से छावड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की सर पर दुपट्टा लिए नीचे आई। अखलाक को उसने कनखियों से देखा, शर्माई और फालसे लिए बगैर वापस चली गई। अखलाक को ये अदा बहुत पसंद आई, थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब उसको घूर के देखा तो वो वहां से चल दिया। चलो आज इतना ही काफी है। चंद दिन ही में अखलाक और उस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज सुबह 9 बजे वो अनारकली की इस गली में पहुंचता, खिड़की खुलती वो सलाम करता, वो जवाब देती मुस्कुराती, हाथ के इशारे से कुछ बातें होती, इसके बाद वो चली जाती। एक रोज उंगलियां घुमाकर इसने अखलाक को बताया कि वो शाम को 6 बजे के शो सिनेमा देखने जा रही है। अखलाक ने इशारे के जरिए से पूछा, कौन से सिनेमा हाउस में? इसने जवाब में कुछ इशारे किए मगर अखलाक ना समझा। आखिर में इसने इशारे में कहा, कागज पर लिखकर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट गई। चंद लम्हात के बाद उसने इधर उधर देखा, कागज की एक मंडोरी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने उसे खोला, लिखा था प्लाजा प्रवीण। शाम को प्लाजा में उसकी मुलाकात प्रवीण से हुई, उसके साथ उसकी सहेली थी। अखलाक उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुआ तो प्रवीण ने नकाब उठा लिया। अखलाक सारा वक्त उसको देखता रहा, उसका दिल धक धक करता रहा। इंटरवल से कुछ देर पहले आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और इसके हाथ पर रख दिया। वो कांप उठी। अखलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल वो उसको अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था जो उसने उसी रोज खरीदी थी। इंटरवल खत्म हुआ तो उसने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांपी लेकिन अखलाक ने हाथ ना हटाया। थोड़ी देर के बाद उसने अंगूठी निकाली और उसकी एक उंगली में चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अखलाक ने उसकी तरफ देखा, पेशानी और नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म खत्म हुई तो अखलाक और प्रवीण की ये मुलाकात भी खत्म हो गई। बाहर निकलकर कोई बात ना हो सकी। दोनों सहेलियां टांगे में बैठी, अखलाक को दोस्त मिल गए। उन्होंने उसे रोक लिया लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए कि प्रवीण ने उसका तोहफा कबूल कर लिया था। दूसरे रोज मुकर्रर औकात पर जब अखलाक प्रवीण के घर के पास पहुंचा तो खिड़की खुली थी। अखलाक ने सलाम किया, प्रवीण ने जवाब दिया। उसके दाहिने हाथ की उंगली में उसकी पहनाई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारे होते रहे। इसके बाद प्रवीण ने इधर उधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंक दिया। अखलाक ने उठाया, खोला तो इसमें एक खत था, अंगूठी के लिए शुक्रिया का। घर पहुंचकर अखलाक ने एक तवील जवाब लिखा, अपना दिल निकालकर कागजों में रख दिया। इस खत को इसने फूलदार लिफाफे में बंद किया, उस पर सेंट लगाया और दूसरे रोज सुबह 9 बजे प्रवीण को दिखाकर नीचे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब इनमें बकायदा खतों की किताबत शुरू हो गई। हर खत इश्क मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक खत अखलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें उसने कसम खाई कि वो हमेशा अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहेगा। इसके जवाब में खूनी तहरीर आई। प्रवीण ने भी हल्फ उठाया कि वो मर जाएगी लेकिन अखलाक के सिवा किसी और को शरीक हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इस दौरान में कभी कभी किसी सिनेमा में दोनों की मुलाकात हो जाती, मिलकर बैठने का मौका उन्हें नहीं मिलता था। प्रवीण पर घर की तरफ से बहुत कड़ी पाबंदियां आयत थी। वो बाहर निकलती थी या तो अपने भाई के साथ या अपनी सहेली जहरा के साथ। इन दोनों के अलावा उसको किसी और के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अखलाक ने उसे कई मर्तबा लिखा, जहरा के साथ वो कभी उसे बारहदरी में जहांगीर के मकबरे में मिले, मगर वो न मानी। इसको डर था कि कोई देख लेगा। इस असना में अखलाक के वालिदिन ने उसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अखलाक टालता रहा। जब उन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अखलाक बिगड़ गया, बहुत हंगामा हुआ। यहाँ तक कि अखलाक को घर से निकलकर एक रात इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड में सोना पड़ा। इधर प्रवीण रोती रही, खाने को हाथ तक ना लगाया। अखलाक धुन का बहुत पक्का था, जिद्दी भी परले दर्जे का था। घर से बाहर कदम निकाला तो फिर उधर रुख तक नहीं किया। उसके वालिद ने उसको बहुत समझाया मगर वो न माना। एक दफ्तर में 100 रुपए माहवार पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगा, जिसमें नल था न बिजली थी। इधर प्रवीण अखलाक की तकलीफों के दुख में घुल रही थी। जब अचानक उसकी शादी की बातचीत शुरू हुई तो उस पर बिजली सी गिरी। उसने अखलाक को लिखा, वो बहुत परेशान हुआ लेकिन प्रवीण को उसने तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, साबित कदम रहे, इश्क उनका इम्तिहान ले रहा है। 12 दिन गुजर गए। अखलाक कई बार गया मगर प्रवीण खिड़की में नजर न आई। वो सब्रो करार खो बैठा, नींद उसकी गायब हो गई। उसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। ज्यादा नागे हुए तो उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। उसको कुछ होश नहीं था। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा प्रवीण के मकान की तरफ चल पड़ा। 15 दिनों के तवील अरसे के बाद उसे प्रवीण नजर आई, वो भी एक लहजे के लिए। जल्दी से लिफाफा फेंक कर वो चली गई। खत बहुत तवील था। प्रवीण की गैर हाजिरी का बाइस ये था कि इसका बाप उसको साथ गुजरावाला ले गया था, जहां उसकी बड़ी बहन रहती है। 15 दिन वो खून के आंसू रोती रही। उसका जहेज तैयार किया जा रहा था लेकिन उसको महसूस होता था कि उसके लिए रंग बिरंगे कफन बन रहे हैं। खत के आखिर में लिखा, तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मैं मर जाऊंगी, मैं जरूर कुछ खा के मर जाऊंगी, इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं क्या इतनी हिम्मत कर सकूंगी? तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बार छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए घर नहीं छोड़ सकती, जहां मेरी मौत के समन हो रहे हैं, लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊंगी, जेवर वगैरह सब उतार कर यहाँ फेंक दूंगी। जवाब जल्दी दो, हमेशा तुम्हारी प्रवीण। अखलाक ने कुछ न सोचा, फौरन उसको लिखा, मेरी बाहें तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। मैं तुम्हारी इज्जत हो इस्मत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। तुम मेरी रफीक हयात बन के रहोगी, जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। एक दो खत और लिखे गए। इसके बाद तय किया गया, परवीन बुद्ध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करेगा। बुद्ध को मुंह अंधेरे अखलाक टांगे में वहां पहुंचकर प्रवीण का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गली में नमूदार हुई, चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सर तापा काप रहती थी। अखलाक खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो अखलाक ने बड़े प्यार से इसके बुरके की निकाब उठाई और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे पर्दे करेगी। प्रवीण ने शर्मा कर आंखें झुका ली। उसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने बालाई होंठ के तिल की तरफ देखा तो उसके होठों में एक बोसा तड़पने लगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसने तिल वाली जगह को चूमा। प्रवीण ने ना की, इसके होठ खुले, दांतों में गोश्त खोरा था, मसूड़े गहरे नीले रंग के थे। गले हुए सड़ांध का एक भपका अखलाक की नाक में घुस गया। एक धक्का उसको लगा, गौर भपका प्रवीण के मुंह से निकला तो वो एकदम पीछे हट गया। प्रवीण ने हाय आलूद आवाज में कहा, शादी से पहले आपको ऐसी बातों का हक नहीं पहुंचता। ये कहते हुए उसके गले हुए मसूड़े नुमाया हुए। अखलाक के होश और आवाज गायब थे, दिमाग सुन गया। देर तक वो दोनों पास बैठे रहे। अखलाक को कोई बात नहीं सूझी। प्रवीण की आंखें झुकी हुई थी। जब उसने उंगली का नाखून काटने के लिए होंठ खोले तो फिर उन गले हुए मसूड़ों की नुमाइश हुई। बू का एक भपका निकला, अखलाक को मतली आने लगी। उठा और अभी आया कहकर बाहर निकल गया। एक थड़े पर बैठा और उसने बहुत देर सोचा। जब कुछ समझ में ना आया तो लायलपुर रवाना हो गया, जहां उसका एक दोस्त रहता था। अखलाक ने सारा वाकया सुनाया तो इसने बहुत लान तान की ओर इससे कहा, फौरन वापस जाओ, कहीं बेचारी खुदकुशी ना कर ले। अखलाक रात को वापस लाहौर आया। घर में दाखिल हुआ तो प्रवीण मौजूद नहीं थी। पलंग पर तकिया पड़ा था, इस पर दो गोल गोल निशान थे, गीले। इसके बाद अखलाक को प्रवीण कहीं नजर ना आई।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।